ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में पलक्कड़ में एक रोड शो के साथ केरल के चुनाव अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये रोड शो पलक्कड़ में हेड ऑफिस रोड से कोट्टा मैदान तक 1 किलोमीटर का होगा। इसके बाद श्री मोदी तमिलनाडु में सेलम के लिए रवाना होंगे, जहां वे आज दोपहर बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने कल शाम कोयम्बटूर में एक रोड शो किया था। उन्होंने 1998 में कोयम्बटूर को दहला देने वाले सिलसिलेवार बम विस्फोट के पीड़ितों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। तेलंगाना में 2 दिन पहले ही बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने वाले भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी आरएस प्रवीण कुमार भारत राष्ट्र समिति बीआरएस में शामिल हो गए हैं। बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने कल शाम एर्रावेल्ली में पार्टी में उनका स्वागत किया। प्रवीण कुमार के साथ बीएसपी के कई नेता और राज्य इकाई के पदाधिकारी भी पार्टी में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक सेवा अधिकारियों से कुशल और स्मार्ट प्रशासन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, ब्लॉकचेन और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि नए विचारों और नई प्रौद्योगिकी के साथ समृद्ध तथा विविधतापूर्ण अनुभव जैसे प्रभावशाली परिवर्तन लाए जा सकते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति भवन में कल राज्य लोक सेवा अधिकारियों से उन्होंने ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि अधिकारियों को कोई भी विकास कार्य करते समय सतत और समावेशी दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल अमरीका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने पिछले महीने नई दिल्ली में आयोजित इंडस एक्स शिखर सम्मेलन और दोनों देशों की तीनों सेनाओं के बीच अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ जैसे हाल के द्विपक्षीय आयोजनों की भी समीक्षा की। बल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन राडेफ ने बल्गारिया के अपहृत जहाज एमवी रोइन के बचाव के लिए चलाए गए सफल अभियान के लिए भारतीय नौसेना का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कल राष्ट्रपति राडेफ ने बल्गारिया के 7 नागरिकों सहित चालक दल के सदस्यों का बचाव करने के लिए भारतीय नौसेना को धन्यवाद दिया। रोइन पोत का पिछले वर्ष दिसंबर महीने में अरब सागर में समुद्री डाकू ने अपहरण कर लिया था। इस जहाज पर बल्गारिया के 7, म्यांमा के 9 और अंगोला का 1 नागरिक सवार था। स्विस संगठन IQAIR ने अपनी हाल की रिपोर्ट में कहा है कि नई दिल्ली की वायु गुणवत्ता 2023 में सबसे खराब श्रेणी की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में हवा का PM2.5 स्तर 2022 के प्रति घन मीटर 89.1 माइक्रोग्राम से बिगड़कर 2023 में 92.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक हो गया था। बिहार का बेगूसराय विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा है। औसत वार्षिक हवा का PM2.55 प्रति घन मीटर 54.4 माइक्रोग्राम स्तर के साथ भारत में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद तीसरी सबसे खराब वायु गुणवत्ता थी। मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में अलग अलग स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि 21 मार्च तक झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में गरज तथा तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तेलंगाना में अगले 2 दिन तक गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहां ओलावृष्टि भी हो सकती है। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 आज स्विट्जरलैंड में शुरू होगा। पुरुष सिंगल्स में 7वीं वरीयता प्राप्त भारत के लक्ष्य सेन मलेशिया के लियोंग जून हाओ के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं किदाम्बी श्रीकांत का सामना ताइवान के वांग जू वेई से होगा। महिला सिंगल्स में 4थी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का सामना जर्मनी की यवोन ली से होगा। नागालैंड में पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कल शाम क्षेत्रीय खेल उत्कृष्टता केंद्र सोविमा में एक शानदार उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने खेलों के आधिकारिक तौर पर शुरुआत की घोषणा की। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को वर्ष 2023 के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान काव्य संग्रह रुद्र सात्विकम और 2013 से 2022 के दौरान साहित्य में उनके योगदान के लिए दिया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।